पाठं श्रीमद्भागवतं का दसरा स्कंद चौथा अध्याय श्लोक संख्या 23।
बोधैः
बोधैः
महद्भिः
महद्भिः
यः
यः
इमा
इमा
पुरः
पुरः
विभो
विभो
निर्माय
निर्माय
शेते
शेते
यत्तमुषु
यत्तमुषु
पुरुषः
पुरुषः
पुंके
पुंके
पुनां
पुनां
षोडशः
षोडशः
षोडश आत्मकः सह अलंकृष्ट भगवान वचांसी भूतैर्महद्भिः इमा पुरो विभुः निर्माय शेते यदमुषु पुरुषः पुंके गुणान् षोडशः षोडशात्मकः सोऽलङ्कृतो विशिष्ट भगवान् वचांसि मे। तत्त्वों के दात्रा महद्भिः भौतिक सृष्टि के यह जो इमा ये सब पूरह शरीर विभु भगवान के निर्माय तैयार करने के लिए शेते लेते यत्तमुषु अवतीर्ण होने वाला पुरुष भगवान विष्णु भूमते प्रभावित करते हैं गुणा इन गुणों षोडश सोलह भागों षोडश आत्मकः इन सोलह का जनक होने थे वह अक्षः वह सुजित सुसज्जित करके भगवान भगवान वैचांसी वाणी को ले अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् ऋषि भक्तिराम गोस्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा जो ब्रह्मांड के भीतर लेट कर तत्वों से निर्मित शरीर को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुषार्थ में जीव को भक्ति गुणों के सोलह विभागों को जो जीव के जनक रूप है अधीन करते हैं वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। पूर्ण आश्रित भक्त के रूप में अपनी सामर्थ्य पर गर्व करने वाले संसारी व्यक्ति से सर्वथा विपरीत सुखदेव गोस्वामी भगवान से प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करते हैं जिससे उसकी वाणी सफल हो और वह श्रोताओं द्वारा समादृत हो। भक्त सदैव अपने आप को किसी भी सफलता में निमित्त मात्र मानता है और अपने द्वारा किए गए किसी भी कृत्य का श्रेय लेने से इनकार करता है जबकि ईश्वरहीन नास्तिक समस्त कार्यकलापों का श्रेय यह जाने बिना लेना चाहिए कि परमात्मा भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अतः सुखदेव गोस्वामी उन परमेश्वर के निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहते जिन्होंने ब्रह्मांड को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। वैदिक ग्रंथों में बड़े सत्य न तो संसारिक कल्पना के सिद्धांत है न वे कपोल कल्पित है जैसा कि अल्पज्ञ कभी कभी सोचते हैं। वैदिक सत्य वास्तविक सत्य के पूर्ण विवरण पर है जिनमें न तो त्रुटि है न भ्रम। सुखदेव गोस्वामी सृष्टि संबंधी सत्यों को वास्तविक तथ्यों के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं न कि दार्शनिक चिंतन के किसी तत्वज्ञान के सिद्धांत के रूप में क्योंकि वे उसी तरह भगवान के इशारे पर चलेंगे जिस तरह ब्रह्मा जी अनुक्रमित हुए थे जैसा कि भगवद गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में ही कहा गया है, भगवान स्वयं वेदांत के आगे जनक है और वेदांत दर्शन के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाले एकमात्र वही है। अतएव वेदों में वर्णित धर्मों के सिद्धांतों से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। ऐसा वैदिक ज्ञान या धर्म सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक पुरुष द्वारा फेंकता है, क्योंकि वे भगवान के विनित दास थे जिन्हें स्वनियुक्त व्याख्या करने की कोई इच्छा नहीं थी। वैदिक ज्ञान की व्याख्या की यही विधि है, इसे परंपरा प्रणाली कहलाती। बुद्धिमान व्यक्ति यह देख सकता है कि चाहे कोई भी भौतिक सृष्टि, चाहे अपना शरीर हो या फल या फूल हो, आध्यात्मिक स्पर्श के बिना वह अच्छी तरह वृद्धि नहीं कर पाती। संसार का सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति या विज्ञानी किसी भी वस्तु को तभी ढंग से प्रस्तुत कर सकता है जब उसमें जीवन हो या आध्यात्मिक स्पर्श हो। अतएव समस्त शक्तियों का स्रोत परमात्मा है, स्थूल पदार्थ नहीं। जैसा कि ब्रह्मवंश भौतिकवादी सोचता, वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि सर्वप्रथम भगवान ने भौतिक ब्रह्मांड के शून्य में प्रवेश किया और तब सारी वस्तुएं एक एक करके विकसित हुई। इस प्रकार भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में स्थित है, अतः एवं उनके सारे कार्य अच्छे ढंग से संपन्न होते हैं। 16 प्रमुख सृजनकारी तत्व जिनके नाम पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश तथा 11 इंद्रियां हैं साक्षात भगवान से विकसित हुए और तब जीवों में बढ़ गए। इस तरह भौतिक तत्वों का सृजन जीवों के भोग के लिए तैयार किया गया। अतएव समस्त भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे जो सुंदर व्यवस्था है वह भगवान की शक्ति द्वारा संभव होती है और प्रत्येक जीव उसे ठीक से समझ लेने के लिए भगवान से प्रार्थना ही कर सकता, क्योंकि भगवान परम चेतना है और सुखदेव गोस्वामी से भिन्न है। अतएव उनकी प्रार्थना की जानी चाहिए। भगवान भौतिक सृष्टि का भोग करने में जीव की सहायता करते हैं, किंतु वे ऐसे झूठे भोग से पृथक रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसे वे सत्य को प्रस्तुत करने में स्वयं सहायता पाने के साथ साथ उन लोगों की भी सहायता कर सके जिन्हें वे सुनने जा रहे हैं। ओम ज्ञान निरंजस्य ज्ञानंजन सदातन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदानं ददाति स्वपदादिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्वजातं सर्वनाथमनाथान्वितं तं सुजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणालिताश्रीशाकांश हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तराधाकान्तरम्भुते सप्तकान्तजनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि
भगवान वचांस में
देव स्वामी की ये प्रार्थना परंपरागत भक्ति तत्व पाने के लिए बहुत सक्षम है और परंपरा का यही एकमात्र अर्थ होता है कि हरे भक्त अपनी वाणी को इसी संप्रदाय के लक्ष्य में ही जोड़ने का प्रयत्न करें, अपना कोई खिसने से निकालकर किसी को मत दो। यथावत का अर्थ प्रभुपाद जी ने जैसे बताया तो गुरु परंपरा की महत्ता ही यही है कि हमें जो ज्ञान ब्रह्मा से नारद मुनि से व्यास और व्यास देव से सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्राप्त होता है तो हमें भी कैसा यथावत प्राप्त हो। लेकिन हर एक वक्ता और श्रोता को इसी ओर से ही जुड़ने की आवश्यकता है, इसके अलावा दूसरा हेतु नहीं चाहिए। मंत्रों की सफलता भी संप्रदाय के आधार पर होती है। संप्रदाय बिना मंत्र के निष्फला होता, निष्फल। और यदि हम देखें तो ऐसी प्रार्थना में विनम्रता, भगवान पर जिसको पूर्ण भरोसा है, भगवान के तत्व विषय पर जिसको पूर्ण भरोसा है, उनकी अनुभूति की है, वैसे सारी चीजें भगवान के लक्ष्य में उसको पता चलता है। वैदिक शास्त्र का नियम यह है कि हमें एक को पकड़ना है, भगवान एक है, भगवान की पूर्णता ही एक ही चरित्र में यदि मिलती है तो कृष्ण भगवान से मिलती है। षोड़श कला, ये षोड़श कला देखो, 16 कलाओं में जो निपुण, ऐसे तो 64 कला मानते, लेकिन भगवान की षोड़श कला का जो प्रतिरूप ये भौतिक सृष्टि में 16 तत्व उपस्थित हुए हैं, बने हैं, पैदा हुए हैं, तो भगवान ने ये माध्यम हर एक जीव जो इनसे बिछुड़े हैं तो उनको दिया। यानी कि जो उद्गम है एक को जानने से सब कुछ बातें पता चल गया। मैंने ये कहा है कि कस्मिन भगवो यस्मिन विज्ञातम सर्वमेव विज्ञातम भवन्ति, एक को जानकर ही सब प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ये भगवान, ये विशिष्ट व्यक्तित्व भगवान का, जिनको जानने से सब प्रकार की जानकारी होती है और वो अपना विस्तार करके अपना विश्वास हमें दिलाने के लिए देखो कितना विस्तार करते रहते हैं। परमात्मा तक उनका विस्तार, हरे हरे कण कण के बीच में भी प्रवेश कर सकता है, हरे के हृदय में भी कण के अंदर भी घुस सकता है, लेकिन ये परम व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण जिनका ये सब आविर्भाव। तो ये जो शास्त्र व्याख्या बताते हैं कि सर्वकारण कारण भगवान श्री कृष्ण, जो कुछ है कोई परमात्मा में मानता है तो कोई ब्रह्मज्योति में मानता है, देवता है, कोई इसमें मानता है उसमें मानता है, जो है, लेकिन एक सर्व कारण कारण एक ही होता है, वो भगवान कहता है। यहां सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से जिन पर भरोसा करके इनकी प्रार्थना करके हमें ये सूचित करते हैं कि इन्हीं से ही यदि परम सत्य जो वास्तविक है वो मिलता है, वो वास्तविक सत्य सत्य वास्तविक होना चाहिए। हवा में लटकने वाला कोई वास्तविक नहीं है, जो शेख चलने के विचारों से पैदा होता है वो अपने अपने दिमागीकरण का कोई वास्तविक आधार नहीं होता। वास्तविक क्या है? वस्तु, वस्तु वास्तव। कारण भागवत के पहले ही स्कंद में
वेद्यम
वास्तविदं ताप त्रयोग उन्मूलनम श्रीमद भागवतम श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परेदीश्वर। इनके अलावा दूसरा कोई परम सत्य देने वाला नहीं है वास्तव। इसलिए जो सत्य है परम सत्य तो सत्य में जयते। और कौन सा सत्य? वास्तविक सत्य ही नाम रतम। जो रतम नहीं है, रतम यानी वास्तविक, सत्य भी होना चाहिए वास्तविक होना चाहिए। तो ये श्रीमद् भागवत में देता है, वेद देता है। और वेदों का जानकार स्वयं कह देते हैं, वेदैश्च सर्वे ही अहम एव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अनूठा जो व्यक्तित्व है वो परम सत्य का पूर्ण चरित्रवान व्यक्तित्व। इनको एकमात्र जानकर ही हमें सब प्रकार की जानकारी होती है। वो कैसे सृष्टि का सृजन करते हैं उसका पता चलता है, और सृष्टि में जो पैदा होने वाली चीजों है जो तीन गुण सर्वप्रथम पैदा करते हैं और तीन गुणों को प्रभावित करने के लिए वो शेष शैया पर सो जाते हैं, शेते लेटे हुए। ये तो आराम की चीज है, भगवान के हिसाब से ये सृष्टि का सृजन करना तो सोते सोते करते हैं। कोई काम सोते सोते होता है क्या? कुछ नहीं होता, पूछना पड़ता है। और भगवान का ये सारी कार्यवाही स्वयं को नहीं है बल्कि अपनी शक्तियों को आदेश दे देते हैं। आदेश भी देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शक्ति का प्रभाव उसको जानती है, भगवान के ये चरित्र को जानती है। पराश शक्ति विविधि श्रूयते स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया से। तो ऐसे व्यक्ति को कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, सब लेते रहो, प्रेम करते रहो, आराम करते रहो, और मनुष्य उसका उल्टा अतिरिक्त करके वो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। मनुष्य सब लेते लेते काम करना चाहता है। कहने का मतलब है कि उसमें अहंकार के अलावा कुछ और स्पष्टीकरण नहीं होता है। जबकि भगवान और भगवान की राह से चलने वाले मनुष्य को बहुत विनम्रता धारण करनी होती है, और ये विनम्रता में भगवान को ही प्रार्थना होती है, भगवान की शक्ति को उद्भुत करके कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं ये वाणी परम सत्य से अलंकृत हो यही इच्छा स्पीकर की होती है, वाचक की नहीं होती है, कथाकार की होती है। कथावाचक और कथाकार में इतना अंतर कि जो परंपरा से जुड़कर अपनी वाणी सिद्धांतों को पकड़ करके ही सुरक्षित रखकर जैसे गुरुपर्व आचार्यों ने जैसे कहा जैसे कहा वैसे ही गुण प्रभुपाद जी ने दो चीज बताई है, डू एज आई डू एंड स्पीक एज आई स्पीक। मैं जैसे बोलता हूं वैसे बोलो, और मैं जैसा करता हूं वैसे करो। तो देख देख कर भी करते हैं, लेकिन उसमें विनम्रता, प्रभुपाद जी पर जितना जितनी श्रद्धा और हम आश्रय लेते हैं, यदि पवित्र भी लोग कर सकते हैं तो हमें क्या दिक्कत। सारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ की स्थापना इसी के स्तर पे तो हुई, अन्य तो कारण ही तो अध्यात्म का परिचय पूर्ण वास्तविक परिचय होना हमारे लिए बहुत महत्व की बात है। तो उससे भिन्न होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान परपूर्ण आश्रय भक्त और जो संसारी व्यक्ति होता है तो उसको भगवान को पूर्ण भरोसा है ही, कहां तक भरोसा नहीं होता है पता। जब तक हम भगवान के पास भौतिक चीजों की मांग करते रहे, ये भौतिक चीज कैसे पैदा हुई, भगवान के साथ क्या निस्बत, वो समझता है उनका ज्ञान बिल्कुल है। भौतिक चीज जो तीन गुणों से पैदा हुई है तो वो भौतिक चीज हमें प्रभावित करती है, यानी भौतिक गुण हमें प्रभावित करते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। आत्मा को शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं। भगवान ने ये गुणों को प्रभावित करके उन्होंने ये 16 तत्व बनाए। भगवान कभी प्रभावित नहीं होते, गुण प्रभावित होते। सत्व में और तमोगुण को प्रभावित भगवान का आध्यात्मिक गुण जो सच्चिदानंद गुण है वो कर सकता है। तो हम भौतिकवादी जब तक है तो हमें कौन गुण प्रभावित करते हैं, माया के तीन गुण सत्व रजो तमोगुण प्रभावित करते हैं। और ना समझ होकर इन तीन गुणों द्वारा जो निर्मित भौतिक चीजों की अपेक्षा ही हम रखते हैं और इस पर भी भरोसा करते हैं। वक्त होते ही अपनी बात बैंक बैलेंस देखते हैं कि देखो ना कल होते जीपीसी शायद निकाल दे, हमें ये नहीं है तो कम कर, ये तो चलेगा था। भगवान को पूर्ण आश्रित रहकर हमें परम सत्य पाना और जो वास्तविक है, तो वस्तु तो बाहर की बाहर रहती है, शायद हम सिद्धांत समझ सकेंगे लेकिन उसका पूर्ण से उपचार नहीं करवाए, क्योंकि जितनी भौतिक आसक्ति है तीनों गुणों का प्रभाव हम पर चल रहा है तब तक हम न तो भगवान का पूर्ण आश्रय। इसलिए कहा गया है कि भगवान के पास कुछ भौतिक चीजों की अपेक्षा करना भगवान का भरोसा नहीं है, वो स्पष्ट करता, क्योंकि हमें इन तीन गुणों भौतिक गुण प्रभावित करते हैं। जब भगवान का जो मूल कर्तव्य है वो तीन गुणों को प्रभावित करना, आध्यात्मिक गुण तीन गुणों को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम आध्यात्मिक गुण का प्रभाव भौतिक अवस्था पर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो तैयारी रखनी चाहिए। जिन जिन तत्वों में आध्यात्मिक गुण है वो भौतिक अवस्था में उसका पलटा मार, ये कुशल गुरु के द्वारा सिखाया जाता है। अध्याय में भगवान कहते हैं जब भौतिक गुणों से प्रभावित है, जब सामान्य संसारी लोग जो अपने कर्मों के फल पे ही आश्रित, तीन गुणों के आश्रित है तो भगवान पर आश्रित नहीं, लेकिन इनको कैसे समझाना, कैसे किस ढंग से वास्तविक सत्य के स्तर पर लाना। तो कहें न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम्, सर्वप्रथम किसी भी प्रकार का बुद्धिवेद नहीं करना चाहिए। अज्ञानी लोग हैं तो अज्ञानी लोग में और कंफ्यूजन आपने की आवश्यकता क्या है ही नहीं अज्ञान कंफ्यूज है। और हम सीधा स्पष्ट कहना चाहिए कि उस कंफ्यूज ना हो। जिसको किसी भी प्रकार का समाधान कर्म में तकलीफ पड़ती है तो ये देखना चाहिए कि स्पष्टता है कि नहीं। स्पष्ट बोल स्पष्ट वक्ता भगवान स्पष्ट वक्ता पर सत्य ही उच्चार कर सकते हैं। वो वास्तविक है। अर्जुन बहुत धार्मिक भावना वाला होने के बावजूद भी जो कुछ बोलता था स्पष्ट नहीं था। पहले ही अध्याय में इतना वो अपने बोलने पर ही वो कंफ्यूज हो रहा है। जो व्यक्ति बोलता है तो उसमें ये देखना चाहिए कि ये स्पष्ट वक्ता है कि स्पष्ट बोलता है कि स्पष्ट यानी कि सिर्फ सिर्फ उच्चारण ही स्पष्ट करता है या उसकी भावना भी स्पष्ट है या हमें स्पष्ट रूप से वो ज्ञान दे रहा है कि समझ दे रहा है कि ये क्या कहना चाहता है हम समझ ही नहीं पाते। तो वाणी को अलंकृत करना यानी कि स्पष्ट रूप से परम सत्य का उच्चार कर जो परंपरा द्वारा ही प्राप्त होती है ऐसे बीच में न तो जिसका कोई भगवान के साथ सीधा कोई जड़ बना है गुरु परंपरा द्वारा ऐसे अपस्टार्ट के पास नहीं जाना। अपस्टार्ट यानी कि ऐसे उद्यम करने वाले के पास जाने की कोई आवश्यकता इन लोगों में विरोधाभास दिखाई देता है। कहते हैं बोलते हैं कुछ और करते ही कुछ तो स्पष्ट नहीं। तो ये प्रार्थना तो काफी गहरी प्रार्थना क्योंकि इसमें परसत्य का पदापाश होता है पदापाश होता है। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के निर्देश अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। परीक्षित महाराज के प्रश्नों के उत्तर इसी प्रकार देना चाहते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी ते ब्रह्म आदि कवये सर्वप्रथम वैदिक ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। ये वैदिक ज्ञान यदि ब्रह्मा जी स्पष्ट नहीं बोलते हैं या ब्रह्मा जी का न सुनने वाले कई देवता का अपनी मनमानी करते हैं तो उनको क्या परिणाम होता है। सूरयः देवताओं को भी काफी मूल्यमान बना देते हैं मुख में डाल देते हैं। ऐसी सारी भौतिक सृष्टि की रचना बताई कि भौतिक सृष्टि में कैसे इन चीजें सारी पैदा होती है तो देवता भी मूल्यमान बन जाए। सर्वप्रथम वेदांत सूत्र में क्या कहा जन्माद्यस्य यथा अन्वयात् इतरश्चापे अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मवदाय आदि कवि उपयत्य सूर्य कैसे दो बातें पता तेजो मारी मृदाम यथा पुरुष ये जो विनिमय है कौन कौन विनिमय करता है विनिमय इज एक्सचेंज लेन देन। सर्वप्रथम विनिमय भगवान ने अपनी दृष्टि से ये जल प्रकृति के तत्व अभी तक पैदा नहीं हुए थे इन पर दृष्टिपात करके इनमें सर्वप्रथम तीन गुणों पैदा किए और हरेक गुणों के साथ भगवान की दृष्टि फिर से दखलगीर कर रही है, फिर से और इतनी बात कर रही है कि देखो तेजो वायु प्रधान, तेज में से पानी और पानी में से पृथ्वी मृदा पैदा हो, तो क्वेश्चन आपको इस ढंग से पैदा होंगे कोई तो समझेगा नहीं, अरे ऑटोमेटिक हो गया क्या है। चंद्रमा में जाते हैं तो कम से कम गर्मी मिलती है, कम से कम बालू भी तो मिलती है, पृथ्वी मिलती है, तो ये सब क्या मुख्य से पैदा हो, तेज में यानी कि प्रकाश होता है यानी अग्नि होती है, अग्नि में से पानी पहले निकलता है, ये मुख्य वैज्ञानिक लोग जो है भौतिक वो मुख्य लोग समझते नहीं, वो कहते हैं सही लेकिन समझ नहीं पाते। देखो क्या कहते हैं कि यदि कोई चीज जलती है तो दो चीज पैदा होती है, कौन कौन सी, कोई है विज्ञान में भाई पढ़ा हुआ है भौतिक विज्ञान है, जब जब कुछ जलता तो दो चीज पैदा होती है,
हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट,
नहीं पैदा हो ना ही देखो, हीट एंड लाइट तो पाइप पर रख चुकी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर वेपर, अपान वायु और पानी की भाप, तो चंद्रमा बिना पानी कैसे पैदा हो गया, पहले तो जला होगा ना, गई आपका गोला ही होगा ना, आग होती है बाद में उसमें से पानी निकलता है और ये गैस भी निकलता है, बाद में पृथ्वी आती है, पानी में से पृथ्वी पैदा होती है, एक पानी की बूंद भी आप रखोगे तो जब पानी डूब जाता है तो क्या रहता है, दाब रह जाता है, तो दाब तो देता है पृथ्वी के तत्व, क्यों पानी में से पृथ्वी पैदा होती, लेकिन मानते हैं अरे पानी में से कैसे पृथ्वी पैदा हो, देखो ये कंफ्यूजन, इसलिए साइंस पर भरोसा नहीं है, ये लोगों की बात स्पष्ट नहीं, लेकिन ये वास्तविक सत्य है कि पानी में से पृथ्वी पैदा होती, क्योंकि पानी में ये पृथ्वी के सारे तत्व द्रवित होते हैं, तो ये भगवान ने ये रचना, अरे देवता भी बड़े बड़े देवता भी चक्कर में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, मोहयंती असुरे, ऐसा विनिमय भगवान अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से भौतिक तत्वों पर करते हैं, और ये तत्व आत्मा को चढ़ते हैं, क्योंकि आत्मा को भौतिक अभिलाषाएं बहुत है, तो भौतिक अवस्था दूर करने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति का परिचय चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा सारी भौतिक अवस्था भी आध्यात्मिक रूप से बदल जाती है, तो गर्म करो वो गर्म होगा लाल होगा तो अग्नि का ही तो धारण कर देगा, उसी तरह जब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जाप करते सारी सारा वातावरण आध्यात्मिक हो जाता है, सारा वातावरण, तो ये अनुभव करने के लिए हमें माला तो जपनी ही चाहिए लेकिन अभ्यास भी करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम कभी झूठ नहीं बोले, भगवान श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं बोले, झूठ तो हम लोग जब तीन गुणों से रंजित होगा उल्टा काम करते हैं। और भगवान की यह सारी स्पष्टता रजू करने के लिए सुखदेव गोस्वामी इनको कहते हैं कि आप ही हमारी वाणी को अलंकृत करें। इसी तरह जब हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया कि अरे यार तेरे जैसा भगवान का नाम कोई ले ही नहीं सकता, तुझे कितना परिचय है भगवान से, किसी और को नहीं, मैं तेरे पास ये परिचय करना चाहता। तो हरिदास कहते हैं भगवान आपने मुझे क्यों चुना, ये तो गलत काम, मैं तो पढ़ा भी नहीं लिखा भी नहीं और एक तो यवन हूं, भगवान के नाम का परिचय मुझे कैसे हो सकता। तो के हरिदास सर्वप्रथम तू अपनी विनम्रता जाहिर करता है क्योंकि ये तेरी शक्ति नहीं, वो बहुत आवश्यक है, इसलिए तो लायक कहने के लिए योर कोई पाए भगवान के नाम की मात्रा उसकी शक्ति का परिचय कराने के लिए बहुत लायक। फिर भी हरिदास नहीं आई एम रॉन्ग नंबर हमें कंसिडर करो दोनों, आप जरा सोच समझते चैतन्य महाप्रभु मत कम थे हरिदास चलो बोलो चालू करो। तो हरिदास ने कहा भगवान मैं जानता हूं कि मैं आपका सेवक हूं, सेवक को मालिक की आज्ञा तो पालन करना ही होता, लेकिन मैं आपको ये विनती करता मेरे अपने में कोई शक्ति भगवान का नाम का परिचय करूंगी या किसी को बताने की, और हम फंसे हैं आपके सेवक यानी कि आज्ञा तो पालन करना ही पड़ेगा, सेवक को तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं चल तो बोल देरी क्यों लगाता। तो हरिदास ठाकुर कहते फिर भी भगवान में एक प्रार्थना करता, देखो यही प्रार्थना, मैं जानता हूं मेरे में कोई शक्ति नहीं, आप इतने दया दयालु हैं, आप हमें आदेश दे रहे हैं, आदेश हमारे सर पर उठाना हमारी जिम्मेदारी, लेकिन जब शक्ति अपनी नहीं है तो जिम्मेदारी भी कैसे उठा पाए। एक काम करो, यदि इतनी अनुकंपा हम पर थोड़ी और कृपा करो, आपकी आकर हमारी जीभ में बस जाओ और जैसे आप बुलाओगे हम बोलेंगे, ये सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं मैं बना ली हूं। अब चेतन मानो तो बस नहीं पड़ा, भगवान की शक्ति और हरिदास ठाकुर जो बोलने लगे कितनी स्पष्टता से बोलने लगे और सारी बात तक बता दी, भगवान के नाम की महत्ता में क्या क्या अवरोध आते हैं वो भी बता। अरे वो भी नहीं, शुरुआत में तो मैंने सर्वप्रथम ये भी जाहिर किया कि भगवान कृष्ण ही एकमात्र भगवान और उसके ही बात सिद्धांत उन्होंने साबित करके बताया। वो कह रहे हैं कि जो भगवान की भगवान का यदि प्रमाण किसी को चाहिए तो भगवान की शक्तियों का जब तक प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक भगवान का परिचय या उसका प्रमाण नहीं होता, लेकिन आप देखिए तो सभी सारी सृष्टि भगवान की शक्ति का प्रादुर्भाव। हाँ? तो उसे कौन लगा सकता है, निपट मूर्ख व अभिमानी जो तीन गुणों से प्रभावित होते हैं भौतिकता के तीन गुणों से, वो ही बहुत गंभीर बात करते हैं। लेकिन फिर भी परम सत्य तो वास्तविक है ही, उनके दिमाग से ये थोड़ा पैदा, ब्रह्मा जी के दिमाग से बहुत सारा पैदा हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी का जो दिमाग चल रहा था तो वो भगवान की इच्छा के अनुसार का चल रहा, इसीलिए वो मानसिक यानी कि मानस पुत्रों को पैदा किया, मानस द्वारा ही उन्होंने बहुत सारी सृष्टि का सृजन कर दी अपने मानस द्वारा। तो ये जो स्पष्टता इसी तरह हरिदास ठाकुर कहते हैं वहां से लेकर उन्होंने जो कभी भी मंदिर में नहीं गया था भगवान का छूने का या भगवान की सेवा करने का तो कोई हिसाब ही नहीं। तो चिंतन महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें हरिनाम की महत्ता बताई है, हरिनाम लेने में क्या क्या अपराध होते हैं वही बताया, लेकिन तू ये भी तो बता हमें कि सेवा अपराध क्या है। सेवा अपराध क्या है? हरिदास फिर से जीत का मतलब कहने हैं कि भगवान आप कैसे, मैं तो नाम ही लेता हूं और तो कुछ नहीं, भगवान की सेवा कभी नहीं की, भगवान की श्री मूर्ति को देखने का भी हमें मौका नहीं देता, क्यों मुझे बालकों का मंदिर में जाने नहीं देता, मैं तो गया भी नहीं, तो सिर्फ सुदर्शन चक्र को हर रोज देखकर मैं भगवान का ध्यान करता इतना ही, मुझे सेवा का तो कोई मौका ही नहीं मिला, अपराध क्या है मैं मुझे कैसे पता। चेतन महाप्रभु कहते हैं हरिदास चल पुटपुटान बातें बात कर, सीधा कहने लगता हरिदास ने कहा ठीक है सेवा अपराध बताने लगता, कहने हैं कि कई लोग 25 सेवा अपराध बता रहे हैं, कोई 35 बता रहे हैं, लेकिन ये अपराध जब विकसित होते हैं तो ये अपराध चार विभागों में बांटा जाता है। सर्वप्रथम भगवान की श्रीमूर्ति की स्थापना में भी अपराध होते हैं, और दूसरे अपराध होता है धाम अपराध होता है, तीसरा अपराध होता है भगवान की भगवान के दर्शन दर्शनार्थियों द्वारा जो किया जाता है वो अपराध, और पांचवा सेवा में जो अपराध बताया गया है वो भक्तों द्वारा अपराध होते हैं, जो पूजा करते हैं कभी अपराध करते हैं। तो अपराधों के लिए क्षमा भी का प्रावधान है, ये भी बता दिया, ये कभी पढ़ने नहीं गया था फिर भी उसने बताया, यानी भगवान के वास्तविक तथ्य को पूर्ण रूप से जानने के लिए हरिदास ठाकुर ने सिर्फ भगवान के नाम पर ही आश्रय और ये आश्रय भगवान से अभिन्न होता है, इसलिए इनका सारी स्पष्टता इन सारे सत्यों पर बनी रही। तो भगवान का नाम और भगवान में अंतर नहीं है कह रहे, लेकिन उसका अनुभव आदर्श होना चाहिए, अपने आंख के समक्ष होना चाहिए, कैसा अपनी धर्म का विश्वास हम रखते हैं। हरिदास ठाकुर ने एक ही फॉर्मूला दिया, भगवान के नाम पर एकमात्र विश्वास ही सारा गंगा छुड़वाता है और भगवान के पास सीधा पहुंचवाता है। इसलिए ये युग में चैतन्य महाप्रभु ने अपना नाम का वितरण करने पीछे एक ही मार्ग रखा है, सबको भगवान के नाम द्वारा उद्धार करना। तो ये गुरु परंपरा द्वारा में प्राप्त होता है, प्रभुपाद जी का आदेश, प्रभुपाद जी का आदेश अपने गुरु महाराज के सिद्धांत सबसे ठाकुर महाराज से दिया, उसी तरह ये चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश है, जिनका जिनकी वास्तविकता श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाम स्पष्ट होती है और उसका ही विजय है, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। तब पूर्ण सत्य हमेशा विजयी ही होता है, अन्य लाभों के लिए उसका विजय नहीं होता। परम सत्य अपनी सत्ता बताता है, हरिनाम की सत्ता होती है, इसीलिए हमें निसंकोच भगवान का नाम स्पष्ट रूप से लेकर सारा वातावरण आध्यात्मिक करने के लिए एकमात्र भावना रखनी चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न
है? हरिदास ठाकुर द्वारा जो अपराध निराकरण की विधि बताई गई वो क्या है? हरिदास जी के द्वारा अपराध निराकरण की जो विधि बताई गई वो क्या
है?
आपने बताया ना कि
नाम अपराध में है, लेकिन पहला अपराध के लिए कोई निराकरण नहीं बताया, होता ही बाकी के नौ अपराधों में है। ये जानना चाहिए कि सर्वप्रथम अपराध है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभक्तों की निंदा करना, ये अपराध का कोई निराकरण नहीं है। एक ही मात्र है ये भगवत भक्त के चरण कमल में क्षमा याचना और इतना आक्रंद करना चाहिए कि दोबारा वो ऐसे अपराध नहीं कर पाते। वैष्णव हमेशा दयालु होते हैं, वो अपराध की क्षमा करते हैं, लेकिन उसके प्रत्येक उणक भाव यानी कि ईर्षा का भाव यदि चालू रहता है तो वो अपराध की क्षमा नहीं हुई है, इसीलिए चालू रहता है। वैष्णव यदि क्षमा देता है तो यह अपराध की असर बिल्कुल नहीं। वो तो तैयार, क्योंकि ईर्षा का भाव यदि चालू रहेगा तो फिर भी वैष्णव बारंबार क्षमा करने के लिए भी तैयार। बाकी के सारे अपराध हरिनाम, हरिधाम अपराध तारे हरिनाम तो मस्तान अपराध नहीं।